ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्तश्च ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकदामयनं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो च कर्तते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की इस रविवालिया प्रतिभोज कार्यक्रम में। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण हमें सदैव प्रेरित करते हैं। क्या प्रेरित करते हैं? भगवान भगवद गीता के द्वारा हमसे एक ही चीज की जो इच्छा है या डिमांड है वो करते हैं। भगवान कहते हैं मन मना भव मन भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो भगवान हमसे किसी और कोई और चीज की कामना नहीं करते। भगवान किसी और चीज की हमसे आकांक्षा या कामना नहीं रखते। केवल भगवान एक चीज हमसे चाहते हैं और वो क्या है? उनका भक्त बन जाए। इसलिए भगवद गीता में भगवान ने बारंबार इस चीज को बोला है कि मेरा भक्त बनो। हाँ, कि मेरा भक्त बनो। 90वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, पुनः 18वें अध्याय में उसको रिपीट करते हैं। तो इसलिए हमें जीवन में कुछ बनने की यदि सोचना है तो एक चीज बनने के लिए तत्पर होना चाहिए कि मुझे भगवान का क्या बनना है? भक्त बनना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब लंदन गए थे एक बार, तो वहां बहुत सारे यूथ उनको मिलने के लिए आए, युवा वर्ग। और प्रभुपाद ने पूछा आप क्या करते हो? किसी ने कहा मैं ये व्यवसाय कर रहा हूँ, मैं PhD हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ। तो हर एक व्यक्ति कई सारी चीजें अपना डेजिग्नेशन बोल रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा कि हम उन चीजों से इम्प्रेस नहीं होते हैं, हम तो चाहते हैं एक ही चीज, हाँ, कि आप क्या बनने चाहिए? भगवान का भक्त बनना चाहिए। तो लेकिन आज की यदि हम स्थिति देखें कि कोई भी व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं बनना चाहता और अपने बच्चों को भी भगवान का भक्त नहीं बनाना चाहता। बचपन से ही बच्चों के दिमाग में ये घुसा देते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। लेकिन कभी कोई ये बोलता नहीं कि बच्चे तुम्हें क्या बनना है? कृष्ण का भक्त बनना है। हजारों हजारों डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े विद्वत्ता प्राप्त करने वाले लोग इस संसार में आएंगे, कुत्ते बिल्ली जैसे जीवन यापन करके शरीर त्याग कर चले जाएंगे, लेकिन उनको कोई स्मरण नहीं करेगा। लेकिन आप देखो प्रहलाद जैसे एक व्यक्ति बालक भक्त बने, आज भी हम उनका गुणगान करते हैं। ध्रुव जैसे छोटा सा बालक भगवान का भक्त बना, आज भी हम उनकी चर्चा करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि वास्तव में हमें भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। और इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ आकर भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं और भगवान का दर्शन आदि करते हैं। श्री श्री रुक्मिणी गौर कदेश के। तो इसी कारण से ये परम आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, मैंने इस आंदोलन की स्थापना की है, इसका एक भी उद्देश्य है कि सारे जगत के लोगों को भक्तों का संग प्रदान करो, ताकि जिसके द्वारा लोग भगवान कृष्ण के महान भक्त बन सकते हैं। इसलिए तो आज मैंने सोचा कि भक्त बनने के लिए एक अंग भी आवश्यक है। कौन सा एक अंग है भगवत भक्ति का, वो है वैराग्य। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ये वैराग्य क्या है। बल्कि कई बार व्यक्ति सोचता है कि भगवान के भक्ति भजन आदि करने से डरता है, या फिर घर का कोई सदस्य भगवान की भक्ति में लगता है तो बाकी सब लोग डरते कि अभी छोड़ के चला जाएगा, ये वैराग्य बन जाएगा, विरक्त हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण यदि हम देखें तो शास्त्र कहते हैं कि ये जो वैराग्य है ये बहुत अधिक प्रिय है। किसे प्रिय है? श्री चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु को ही नहीं बल्कि भगवान को भी प्रिय है। भगवान को भी नहीं बल्कि संसार के जो जीव है साधारण लोग, उनको भी वैराग्य बहुत अच्छा लगता है। अपने जीवन में नहीं, किसके जीवन में? दूसरों के जीवन में। ये समस्या है। तो ये जो वैराग्य है जब हम देखते हैं कहा, तो हम क्या करते हैं, उसका सम्मान आदि करते हैं, या सम्मान की भावना हमारे अंदर आती है। और जिस व्यक्ति के अंदर ये वैराग्य का भाव होता है उसको हम नतमस्तक होना शुरू करते हैं। बड़े बड़े राजागण विरक्तियों के सामने क्या करते हैं? झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि जो सर्वसाधारण व्यक्ति के अंदर विरक्ति का भाव आता है तो सारा जग उसकी बात सुनता है। जैसे देखो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वैसे देखा जाए तो भारत के एक बड़े नेता है, राष्ट्रपिता जिनको कहते हैं, और लोग उनको सब कुछ देने के लिए तत्पर थे। क्या ऐसा था महात्मा गांधी में? ये वैराग्य का भाव था। वो किसी पंत प्रधान का जो पद है, राष्ट्रपति का पद है, इन सब चीजों के लिए वो लालायित नहीं थे। बल्कि सारे देशवासियों ने सोचा, कहा कि हम आपको वो पद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी वो सब चीजों से विरक्त थे, निराशक्त थे, जिसके कारण, और सरल जीवन था, सरल वस्त्र आदि धारण करते थे। तो लोगों ने क्या किया, उनको अपने सर में उठा लिया और उनको सम्मान आदि प्रदान किया। तो उसी प्रकार से इस संसार में भी हम जब किसी को देखते हैं जिसने गेरुआ वस्त्र धारण किया है, तो वो जैसा मर्जी हो हम क्या करते हैं, उसके प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हैं, आदर आदि का भाव प्रकट करते हैं, चाहे उस व्यक्ति के अंदर वैराग्य हो या ना हो। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये परम आवश्यक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण हैं, वो भी जब इस जगत में प्रकट होते हैं तो इस वैराग्य की शिक्षा देने के लिए संन्यास धारण करते हैं। और संन्यास धारण क्यों किया चैतन्य महाप्रभु ने, तो उसका एक में कारण था। क्या कारण था? कि ये संसारिक लोग उनको आदर दे, सम्मान दे, प्रणाम करें, जिसके कारण उनका उद्धार हो सकता है। यदि आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे तो एक स्थान में बैठकर एक दिन ऐसा ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और जोर जोर से गोपी 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 का उच्चारण कर रहे थे। तो एक व्यक्ति आया और उनके पास एक युवक आया जो स्टूडेंट था, उन्होंने कहा अरे विमाय, ये कलयुग का धर्म तो हरिनाम संकीर्तन है, कृष्ण के नामों का उच्चारण करना चाहिए, तुम ये गोपी गोपी चिल्ला रहे हो, कौन से शास्त्र में बोला है? चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के महान भक्त का स्मरण कर रहे थे, गोपियों का जो कृष्ण की सेवा में सर्वोच्च है। तो चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आया और वो उठे, साथ में डंडा पड़ा था, लाठी लेकर उसके पीछे भागे और उसको मारने के लिए दौड़ रहे थे। तो वो जो युवक स्टूडेंट था, वो और बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े थे दूर, तो उनके बीच में चला गया। निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु रुके थे यहाँ, तो उन स्टूडेंट्स के बीच में जाकर बोला कि वो निमाई जो चैतन्य है उनको क्या हो गया है, वो मुझे मारने के लिए दौड़े हैं। तो जितने स्टूडेंट थे उन्होंने सोचा कि ये निमाई पंडित अपने आप को क्या सोचता है चैतन्य महाप्रभु, यदि वो आगे से ऐसी हरकत करेगा, ब्राह्मण को मारने की चेष्टा करेगा, तो हम सब मिलकर उसको मारेंगे। तो ये बात स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो परमात्मा रूप में सबके हृदय में है उन्होंने जानी, और उन्होंने सोचा कि मैं इस संसार में दवाई देने आया था, ये लोग मुझसे ईर्ष्या करेंगे, मुझसे द्वेष करेंगे, मेरा अनादर करेंगे, तो इसका कभी हित नहीं होने वाला इस संसारी जीवों का, तो इसलिए क्या करूंगा, उनके हित के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, संन्यास स्वीकार किया, केवल ऐसे जीवों के हित के लिए जो वास्तव में उनका अनादर करते हैं, उनसे ईर्ष्या आदि का भाव रखते हैं, उनके उद्धार के लिए चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते हैं और सारे जगत को वैराग्य की शिक्षा देते हैं। कौन सी शिक्षा देते हैं? वैराग्य की शिक्षा। और वैराग्य के भाव हमें आज या कल हमारे हृदय में लाना ही लाना होगा, यदि हम नहीं स्वयं नहीं लाएंगे तो हमारे लिए कृष्ण अरेंज करेंगे, ये न के न प्रकार ऐसी स्थिति में डाल देंगे कि फिर आप वैराग्य बने बिना नहीं रह सकते, किसी न किसी प्रकार से हृदय में आपके वैराग्य का भाव भगवान ला देंगे, तो भगवान फिर कठोरता से भी ला सकते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पहले से ही स्वाभाविक रूप से उस भावना को धारण करना चाहिए अपने हृदय में और भगवत सेवा में नियुक्त हो जाना चाहिए। तो लेकिन भारत में वैराग्य के बारे में बहुत कन्फ्यूजन है। वैराग्य का यदि हम विचार करते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि वैराग्य में सब को छोड़ छाड़ दे देना, सब कुछ को लात आदि मार के क्या करना, जंगल में चले जाना, ये वैराग्य है। लेकिन वास्तव में आज हम सीखेंगे कि असली वैराग्य क्या है और नकली वैराग्य क्या है, फल्गु वैराग्य क्या है। तो असली वैराग्य क्या है, श्रील प्रभुपाद एक स्थान में कहते हैं, असली वैराग्य का मतलब है या वैराग्य का अर्थ क्या है, कि ये स्वीकार करना कि मुझे और अधिक अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना है, मुझे केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना है। क्योंकि जो हमारा जीवन का कार्य है वो केवल अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए करते हैं, पांच इंद्रियों के लिए, नाक जीवा त्वचा कर्ण है, और ये इनकी संतुष्टि के लिए हम लालायित रहते हैं। नाक से हम सुगंध लेना चाहते हैं, जीवा से हम अच्छा अच्छे व्यंजन चखना चाहते हैं, कानों से मधुर भौतिक संगीत को सुनना चाहते हैं दिन रात, और आंखों से भौतिक सौंदर्य को देखना चाहते हैं। व्यक्ति इतना पागल हो जाता है इन इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए, मृत्यु उसके सामने खड़ा हो जाता है, फिर भी वो इंद्रियों की तृप्ति से वो शांत नहीं होता। मुझे याद है बचपन में हम जंगल में ऐसे जाते थे घूमने, तो वहां एक बार एक सांप को देखा, तो वो सांप क्या कर रहा था, एक मेंढक को खा रहा था। किसे खा रहा था, आपने मेंढक देखा है, सांप देखा है, तो एक सांप मेंढक को खा रहा था, और कितना खा लिया उसने, आधा खा लिया। वो मेंढक आधा सांप के मुंह में है आधा बाहर है, तो हमें तो बड़ा आनंद आ रहा था, हम तो देख रहे थे लेकिन हम बोल गए थे कि हमारे मृत्यु भी ऐसे होने वाली है, हम भी काल के गर्त में जाने वाले एक दिन। तो लेकिन एक आश्चर्य की गोष्ट नजर आई, वो ये थी कि वो मेंढक आधा अंदर है आधा बाहर, या भी पूरा मरा नहीं था पूरा अंदर भी नहीं गया था, लेकिन फिर भी मेंढक अपनी जीभ बाहर निकाल के कुछ है क्या खाने के लिए ट्राई मार रहा था, मतलब मर रहा है फिर भी क्या चाहिए जीवा के लिए, गोलगप्पे खाऊंगा तो लाल किले के पास। कुछ लोग होते हैं ना उनको गोलगप्पे खाने तो उधर के ही खाने हैं, कान से सुनना है तो यही सुनना है। अरे ये इंद्रिया आपको दुख दिए बिना रह नहीं सकती, खा खा के कितनी चीजें खाओगे। हम व्यक्ति जैसे पेरिस में पता नहीं कौन से कंट्रीज का पढ़ रहा था, ब्राजील या कहा कम्युनिटी है, वहां लोग जीभ इतनी कंट्रोल में नहीं है, खाते रहते खाते रहते खाते रहते हैं और भी खाने की इच्छा होती है, तो खाने के 10 मिनट के बाद फिर से उसको उल्टी कर देते हैं और फिर से खाते हैं। क्यों? क्योंकि तंग सबसे बड़ी समस्या क्या है, जीभ का अग्रभाग उसको संतुष्ट करने के लिए। वैसे ही स्पर्श करना चाहते हैं हम, सॉफ्ट चीजों का स्पर्श, कभी मन उससे भरता नहीं है और हमेशा देखना चाहते हैं सुंदर सुंदर चीजों को। हाँ, जैसे पतंगा फायर को देखकर आकर्षित होता है लेकिन उसमें जाकर मर जाता है। हिरान हाँ जो बहेलिया है शिकारी है उसके मधुर संगीत को सुनती है और उसके चपेट में आ जाती है। तो अल्टीमेटली ये जो इंद्रिय तृप्ति है उससे विरक्ति का भाव स्वीकार करना और इन इंद्रियों के द्वारा भगवत सेवा में नियुक्त होना। तो भक्ति क्या है? भक्ति चीज बहुत सरल है और बहुत आनंददायी है। रूप गोस्वामी कहते हैं सर्वपादे विनिर्मुक्ता तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशः सेवनम भक्ति रुच्यते। व्यक्ति को लगता है भक्ति करना में स्कूल छोड़ना होगा, जॉब छोड़ना होगा, धन त्यागना होगा, संबंध खत्म करने पड़ेंगे तब भक्ति करेंगे, वो मूर्खता का समझ है। भक्ति मतलब क्या? स्थाने स्थिति गताम तनोवाम मनो भी, आप जिस स्थान में हो वहां रहो लेकिन क्या करो अपना मन वाणी और इंद्रियों को किसकी सेवा में लगाओ? कृष्ण की सेवा में लगाओ। हाथ दिए हैं भगवान की सेवा में लगाओ, जीभ दिया है बोलने की शक्ति दी है भगवान के नामों का उच्चारण करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सरल है, भोजन करना है अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ, कृष्ण को भोग लगाओ घर में और उसको खाओ। सब कुछ कृष्ण से संबंधित करना है उसी को वास्तव में भक्ति कहा गया है और यही एक प्रकार का वैराग्य है। तो शास्त्र कहते हैं कि वैराग्य क्या है, तो भगवान ने और एक सरल भाषा में बताया है भगवद गीता में, भगवान कहते हैं इंद्रिय अर्थेषु वैराग्य। किसके अर्थ से वैराग्य लेना? इंद्रियों का अर्थ, इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए हम पागल हैं। देखना है तो भगवान को देखो, सुनना है तो भगवान की कथा कीर्तन दे सुनो। हाँ, तो इस प्रकार से अपने सूंघना है तो भगवान को अर्पित पुष्प आदि को सूंघो। तो इस प्रकार से हमारे इंद्रियों को क्या कर सकते हैं? भगवान से संबंधित कार्यों में लगा सकते हैं और इंद्रियों के जो विषय है जो विष के समान है, किसके समान है? विष, विषय विषा नले दिवा निशी हिया ज्वले जुड़ाएते ना कहीं उपाय। इस जगत में हर एक व्यक्ति ये विषयों को भोगने के लिए दिन रात उसका हृदय जल रहा है, सोच रहा है कब मुझे इस संसार के भोग भोगने के लिए मिलेंगे, उसके लिए पागल हो रहा है लेकिन कभी भी वो पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं होता क्योंकि ये इंद्रियों की फायर ऐसी है और ये जो विषय है वो घी के समान है, उसमें जितना डालो कभी तृप्त नहीं होंगे। शास्त्र कहते हैं उनकी तृप्ति तो भगवत चरणों में है और किसी चीज में नहीं है। इसलिए दो प्रकार के वैराग्य है, उसको व्यक्ति को समझना चाहिए और तब सोचना चाहिए कि कैसे ये जो वैराग्य है उसको विकसित करना चाहिए। दो प्रकार का वैराग्य क्या है, एक है असली वैराग्य और दूसरा है नकली वैराग्य। असली वैराग्य को शास्त्रीय भाषा में बोला गया है युक्त वैराग्य। तो रूप गोस्वामी उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं अनासक्तस्य विषयान् यतारह उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। अभी वैराग्य का असली डेफिनेशन क्या है, तो शास्त्र कहते हैं अनासक्तस्य विषयान्। इस संसार के सारी चीजों से व्यक्ति को क्या होना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए। उसके प्रति कोई प्रीति नहीं रखनी चाहिए। उसका सरल उदाहरण है, जब हम सुबह मल त्यागने के लिए जाते हो टॉयलेट में, उससे प्रेम होता है हमें कि अरे कितनी बहुत प्रेम था, कहां छोड़ दिया मैंने उसको, ऐसे सोचते हैं। उससे स्वाभाविक अनासक्ति है, हृदय में दुख होता है उसके प्रति त्यागने से। त्यागात शांति अनंतरम, भगवान गीता में क्या कहते हैं, त्याग में शांति है। और इसको अनुभव करना है तो समय कौन सा है, सुबह। त्याग में शांति शांति है। जितना व्यक्ति इकट्ठा करता रहता है संसार जीवन में उतना ही वो परेशान रहता है। तो इसलिए पहली चीज है अनासक्तस्य विषयान् यतारह उपयुञ्जतः। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि विषयों से अनासक्त होना चाहिए, लेकिन जो भी वस्तुएं हैं इस जगत की उनसे तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। अभी कोई कहेगा अरे जैसे प्रभुपाद को पूछा, स्वामी जी आप जेट विमान से घूमते रहते हो, अलग अलग देशों में जाते हो, क्या है ये साधु, बड़े बड़े विमानों से जाते हो, फ्लाइट से घूमते हो पूरे वर्ल्ड में। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं सारा जो संसारिक लोग है, सारा जग नरक की ओर तेजी से जा रहा है। अब वो लोग तेजी से नरक में जा रहे हैं तो उनको मैंने तेजी से पकड़ने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहा हूं, फ्लाइट्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो मतलब इस संसार में जो भी वस्तु है वो वास्तव में कृष्ण की सेवा के लिए बनाई गई है, कार्य है, भगवान के मंदिर आने के लिए बनाई गई है, वृंदावन जाने के लिए बनाई गई है, ट्रेंड्स है, जगन्नाथपुरी धाम द्वारका आदि के लिए बनाई गई है। तो मतलब इस संसार की वस्तु ये बाधा नहीं है, लेकिन उनसे हृदय में प्रीति आसक्ति की भावना नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उनका इस्तेमाल भगवान की सेवा में करना चाहिए। निर्बंध, तब व्यक्ति क्या होगा, बंधन से रहित होगा। यदि वो वस्तु ये रखकर उनके प्रति प्रेम का भावना होगा तो हृदय में कष्ट होगा। जैसे एक व्यक्ति था, उसके पास गाय थी और उसने सोचा उसको किसी और सिटी में जाना था दूसरी जगह, तो घर में कोई नहीं था गाय का देखभाल करने के लिए। तो उसने क्या किया, पड़ोसी को कहा कि हे पड़ोसी आप मेरी गाय को जरा एक हफ्ते के लिए संभालो, ये दूध देती है, हम उसी गाय को रखते किस जो हमें कुछ दे, दूध दे। तो इसने पड़ोसी के पास दी कि आप दूध भी पी लो, जो मर्जी करना है करो, गाय को संभालो। तो ये गया और ये व्यक्ति दूध निकालता था, काफी दूध निकलता था, लेकिन दूध का इस्तेमाल घर वालों को करने नहीं देता था। दूध जितना आता था कुत्ते को पिलाता था, किसको पिलाता था, कुत्ते को। अभी एक हफ्ता बीता या 10 दिन बीते, गाय का जो ओनर है वो वापस आ गया और गाय को लेके जा रहा था उसके घर से। तो गाय को जब लेके जा रहा था तो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। तो पत्नी कहती है कि कुत्ता क्यों भौंक रहा है, तो जो व्यक्ति है वो कहता है तुम भी ऐसे ही भौंकती यदि तुम दूध पीती, क्योंकि अभी कुत्ते को पता था कि अभी कल से दूध नहीं मिलने वाला, उसकी आसक्ति हो गई अभी मैं वैराग्य का दिन था वन सेंस, उसके लिए विरक्ति की भावना आनी चाहिए थी कुत्ते के हृदय में भी। तो इस संसार में आसक्ति क्या है? दुखों का कारण है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ मिजरी। आसक्ति, किसी से भी, भगवान के अलावा किसी को भी अपना हृदय दोगे तो आपका अगला रोने के लिए तैयार हो जाओ। कृष्ण के अलावा किसी से प्रेम करोगे, चाहे आपका मोबाइल है, आपकी कार है, आपका घर है, आपका चप्पल है, कोई भी वस्तु हो, उससे यदि लगाव बढ़ा दिया तो सोचो दूसरे दिन आपको क्या करना है, रोना ही रोना है। हाँ, जैसे वो कुत्ता का लगाव किससे हुआ था? दूध से। दूध नहीं मिला, दूसरे दिन भूखने लगा। तो वैसे ही है, भगवान से हमें लगाव बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, तो इस प्रकार से यदि भाव हम रखते हैं, निर्बंधक कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, इसको असली वैराग्य कहते हैं। फिर से बताता हूं, असली वैराग्य क्या है? सांसारिक सारी वस्तुएं हमारे लिए बाधा नहीं है। बाधा कब है? जब उनसे आप आसक्ति का भाव रखते हो और अपनी भोगों के लिए यूज करने की भावना उसमें रखते हो, और उनको उनका तिरस्कार भी नहीं करना है, उनका इस्तेमाल किसकी सेवा में करना है? भगवान की सेवा में। तो वो क्या है? वैराग्य व्यक्ति है। और दूसरा जो छोटा वैराग्य है, तो इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। और दूसरा जो वैराग्य वो क्या है? प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्य फल्गु कथ्यते। तो दूसरा झूठा वैराग्य क्या है? फल्गु वैराग्य, उसको कृत्रिम वैराग्य कहते हैं। कि व्यक्ति ये संसारिक सारी जो वस्तुएं हैं उनके प्रति संसारिक भाव रखता है, प्रापंचिक भाव, हाँ कि ये संसारिक चीजें हैं, हाँ इसको क्या करना है। उसका संबंध किससे नहीं देखता? कृष्ण से नहीं देखता। कोई भी ऐसी चीज नहीं जगत में जो किससे संबंधित नहीं हो? कृष्ण से। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूतों से तो हर चीज बनी है। तो कोई भी चीज हो एन केन प्रकार किससे संबंध रखती है? कृष्ण से। तो जो झूठा वैरागी है वो उसको कृष्ण से संबंध नहीं देखता, और अपनी मुक्ति की इच्छा से मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्य वो क्या करता है? उसका त्याग करता है उन चीजों का। तो ऐसा व्यक्ति का वैराग्य क्या है? झूठा है या ढोंगी है। इसी कारण से व्यक्ति को ये जानना चाहिए ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसके पास भौतिक बुद्धि है। भौतिक बुद्धि के कारण ही हम सारी चीजों को भौतिक ही समझते हैं। जैसे सोचो चरणामृत है, आप सोचते ये क्या है? चरणामृत तो दूध साकर मिला के पिला रहे हैं लोग। वैसे देखा जाए तो दूध साकर का पानी है, लेकिन वो किससे संबंधित है? कृष्ण से। कृष्ण का अभिषेक किया है, चरणों का अमृत है, उसको पीने से क्या होता है? पुनर्जन्म न विद्यते। इस प्रकार से भगवान से संबंध देखे तो बहुत ग्लोरियस है, और भौतिक बुद्धि से देखे तो ठीक नहीं है। तो इसलिए जो भौतिक बुद्धि रखते हैं वो हर चीज को त्यागना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, और उसको कृष्ण से संबंधित नहीं देखते। वो इतना ही नहीं, कृष्ण को भी त्याग देते हैं। किसको त्यागते हैं? कृष्ण को भी त्याग देते हैं। इसलिए कहते हैं बड़े बड़े वैरागियों से भी आजकल के लोग वैरागी हैं। उन्होंने किसको त्याग दिया अपने जीवन से? भगवान को ही त्याग दिया, हम कृष्ण को ही त्याग दिया। अनादृत युष्मदांद्रया, भगवान के चरण कमलों को त्यागते हैं। तो ऐसे निर्विशेषवादी, निराकारवादी, जिनको मायावादी कहते हैं टेक्निकल भाषा में, वो भूल जाते हैं कि सब कुछ क्या है? कृष्ण का शक्ति है, और भगवान कृष्ण से सब कुछ संबंधित है। तो वो लोग अपने शरीर को सुखा सुखा कर मार डालते हैं। व्यक्ति को लगता है वैराग्य का मतलब शरीर हड्डियों वाला होना चाहिए, नहीं, बल्कि सोचना चाहिए ये शरीर किस कृष्ण ने दिया है हमें, किसकी सेवा में इस्तेमाल करने के लिए, उनकी सेवा में। इसलिए भागवतम में कहा गया है नर देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये मनुष्य जीवन इतना मूल्यवान है, ये माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण को समझ सकते हैं। तो ये उचित नहीं है हाँ, जो लोग इन सब चीजों को त्यागते हैं लेकिन कृष्ण का संबंध न देखते हुए। प्रभुपाद इसको समझने के लिए बड़ा सरल उदाहरण देते थे। प्रभुपाद ने कहा, सोचो एक व्यक्ति का धन, आप रास्ते से जा रहे हो और किसी का पर्स, मनी पर्स गिरा हुआ आपको नजर आया, तो तीन प्रकार के लोग वहां से गुजर रहे हो। पहला व्यक्ति जाता है वो सोचता है अरे क्या करना है इसको, छोड़ दो ना, निकलते हैं आगे, वो निकल जाता है, तो वो उचित नहीं है। दूसरा क्या करता है, वो उसको लेता है, अच्छा हुआ आज मेरा भाग्य खुल गया है, आज उठ के मैंने शायद किसी का अच्छा मुझे दर्शन किया होगा जिसके कारण धन मुझे मिला है। हमारे लोग कहते हैं कि चिपकली आपके शरीर पर गिरे तो आपको धन की प्राप्ति होगी, ऐसी कुछ कुछ भी चीजें लोग सोचते हैं। तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो धन उठाता है अपने लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन ये दोनों भी फल्गु वैरागी हैं, झूठे वैरागी हैं। तीसरा व्यक्ति क्या है, असली वैरागी है, वो उस धन को उठाता है, मनी पर्स को उसमें देखता है किसका एड्रेस है और उसको जाकर क्या करता है, वापस देता है, वो असली वैरागी, वो है कृष्णा के डिवोटीज, वो है हनुमान। कौन है हनुमान का ये कार्य है, सीता को ले आना और किसकी सेवा में रखना, भगवान राम की। तो उसी प्रकार से ये सारा जो जगत है वो हमारे भोग के लिए नहीं बनाया है, वो भगवान की सेवा के लिए, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए बनाया है। इसी कारण से प्रभुपाद कहते थे कि ये जो तीसरा वैराग्य की जो भावना है, तीसरा व्यक्ति वो वास्तव में युक्त वैरागी है और वो असली वैराग्य है। अब फल्गु में ढोंगी, जैसे भारत में आप जाओगे एक स्थान है जहां ये फल्गु नदी है, गया में भी है, बिहार में है फल्गु नदी, ऊपर से जाओगे तो मिट्टी है, पानी दिखता ही नहीं है, थोड़ा हाथ नीचे डालो नीचे पानी ही पानी। तो वैसे ही है ये जो फल्गु झूठे वैरागी है, ऊपर से तो इतना वैराग्य का भाव लेकिन अंदर में हृदय में क्या है, भोग करने की भावना ठूस ठूस के भरी हुई है। वो मौका ढूंढते रहते इंद्रियों का भोग करने के लिए। हाँ, तो ऐसे लोगों को एक नाम दिया गया है मरकट वैराग्य। कौन सा वैराग्य, मरकट मीन्स बंदर, मरकट का मतलब है बंदर। बंदर भी बड़ा वैरागी है। किसने देखा बंदर का घर होता है, चार कमरे की कोठी देखी बंदर की आपने, और उस किसी मॉल में जाकर कपड़े पहन के बंदर बाहर आ रहा है। आज तक हमने बंदर को कपड़े पहनते हुए नहीं देखा, इतना वैराग्य कि बंदर सदैव नागा बाबा की तरह रहता है, कोई वस्त्र नहीं, कोई घर नहीं। हर बारिश का मौसम आता है, जब हम स्कूल में थे तो एक चैप्टर था उसमें, जो हर बारिश का मौसम आता है बंदर के ऊपर वो चैप्टर था जिसमें बताया था, बारिश का मौसम आता है तो बंदर अरे ओ भीग रहा हूं मैं, अगला बारिश आने से पहले घर बनाऊंगा, लेकिन कभी घर बनाता नहीं है। तो कोई कह सकता है ऊपरी रूप से ये बड़ा वैरागी लग रहा है, वस्त्र नहीं है और घर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इंद्रियों का भोग करने के लिए क्या करता है, एक डजन बंदरिया रखता है। कितने डजन, एक नहीं कई डजन, बाहरी रूप से वैरागी लेकिन इंद्रियों का भोग करने के लिए कई डजन बंदरिया है। जैसे मैं वहां कुंभ मेला नहीं, वो एक गंगा सागर मेला में गया था, तो वह बहुत सारे नागा बाबा भी थे लेकिन उनके अंदर कुटिया के अंदर और भी थे। हाँ, तो फिर मुझे लगा कि ये कैसा वैराग्य है। हाँ, तो वैसे ही इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। बंदर की तरह बाहरी रूप से आप बिल्कुल वस्त्र और किसी, हम पैसे कुछ होते ना, हाँ पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि वैरागी है हम। तो वास्तव में भगवान की सेवा में सारी चीजों को नियुक्त करना चाहिए। और दूसरा वैराग्य एक प्रकार का है, फल्गु के अंदर ही आता है, उसको कहते हैं स्मशान वैराग्य। सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है स्मशान वैराग्य? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, बहुत कम लोगों ने। स्मशान वैराग्य का मतलब है, पहले तो हमें लगता नहीं कि मैं मरने वाला हूं। कितने लोगों को लग रहा है कि अरे मेरी मृत्यु होने वाली है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा, आनी आनी भूतानी गच्छन्ति यमालयम् शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य आता परम। युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछा, इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा, इस संसार में किसी भी व्यक्ति को लगता नहीं कि मैं मरने वाला हूँ। सबको लगता है मेरा पड़ोसी मरेगा, मेरे दादा परदादा ये सब लोग मरेंगे। वो रोज टेलीविजन में देख रहा है, न्यूज में पढ़ रहा है वगैरह, लेकिन लगता नहीं कि अगला नंबर मेरा है। प्रभुपाद कहते थे, सिर्फ बकरी है, एक बकरी काट के रखता है वो कसाई, दो बकरी वहां घास उनके सामने डाली रहती है, वो मस्ती में हरी हरी घास खा रही है। वो उस मूर्ख बकरी को पता नहीं है अगले समय में लटका है किसको जाने वाला है, इन्हीं का नंबर है। वैसी हमारी स्थिति है। अभी हम बिल्कुल भौतिक जगत में इतने रममान हो गए हैं, सज धजने में, सब कुछ करने में, और अगला नंबर किसका आने वाला है? हमारा। तो एक वैराग्य, स्मशान वैराग्य, व्यक्ति अंतिम यात्रा में जाता है। आप किसी यात्रा में जाओ या ना जाओ, लेकिन एक यात्रा में आपको जरूर जाना पड़ेगा। वो कौन सी यात्रा है? अंतिम यात्रा, हमारी अंतिम यात्रा। हम दूसरी की यात्रा में जाते हैं, तो जब आप दूसरी की यात्रा में जाते हो, स्मशान में जाते हो, तो वहां जाकर आपस में बात करते हो, अरे देखो यार इस जीवन में क्या रखा है, ये व्यक्ति अभी चला गया, इसका इतना बिजनेस था, ये था वो था, फाइनली ये बीमारी हो गई, यहाँ पैसा खर्च कर दिया, और देखो अभी चला गया, कुछ ले गया साथ। इसको भी लगते हैं, अरे नहीं नहीं अभी भी हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तो ये दोनों मित्र आपस में इतना वैराग्य का बातें करते, पूरा लगता है कि दो महान मुनियों की चर्चा हो रही है। और फिर इतनी चर्चा कर करके जब अंतिम संस्कार होता है, तो स्मशान भूमि से बाहर आते हैं और अपने कार का चाबी या मोबाइल निकालते हैं, और फिर सब कुछ क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। उसी समय वो वैराग्य वहां तक ही था, एक घंटे का वैराग्य। हमारे अंदर भी कभी कभी ऐसा वैराग्य आता है। हम कभी मंदिर आते तो लगता है नहीं, बाहर जाते ही जप करेंगे, भक्ति करेंगे, गीता पढ़ेंगे, क्रॉस करते ही घर उसमें जाते ही कार में, और म्यूजिक लगाते भौतिक गाने, सारा वैराग्य कहाँ छोड़ के जाते हो आप? मंदिर में, घर लेके नहीं जाते हैं। तो हमारे ऐसी भावना है, ऐसी हमारी स्थिति है। तो इसको कहते हैं स्मशान वैराग्य। और शास्त्र कहते एक वैराग्य है, उसको कहते हैं प्रसव वैराग्य। प्रसव में जब स्त्री किसी बच्चे को जन्म देती है, तो उसको मृत्यु के समान वेदना होती है, शास्त्र कहते हैं। इतनी वेदना, वो कहते हैं कि आगे फिर किसी बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, उसको वैराग्य आता है। कहते आगे जन्म नहीं दूंगी, लेकिन फिर देखते हैं फिर से दूसरे बच्चे को जन्म देती है। तो हमारे जीवन में भी कभी कोई कष्ट आ जाता है ना, तो सोचते नहीं नहीं भगवान इस बार कुछ चमत्कार करो, ये कष्ट दूर हो जाए, कष्ट मिटे तन का। वो क्या है गीत? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो ऐसे ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो जब बड़ा कष्ट आता है, तो भगवान को प्रार्थना करते इससे बाहर निकालो, और फिर बस उसके बाद आप देखो रेगुलर भगवत गीता, भागवतम, मंदिर जाना, जप करना, सेवा करना। लेकिन जैसे कष्ट थोड़ा खत्म हो जाता है, फिर से हम उस भौतिक कार्य में डूबते हैं, जैसे वो स्त्री है फिर से दूसरे बच्चे को जन्म देने की तैयारी करती है। तो इस प्रकार से ये जो वैराग्य है, ये निकृष्ट है। श्रेष्ठ वैराग्य क्या है? प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रेष्ठ वैराग्य यही है, वनम गतो यत् हरि आश्रयेत, कि भगवान हरि का आश्रय ग्रहण करना ही वास्तव में श्रेष्ठ वैराग्य है। तो वो कैसे हम विकसित कर सकते हैं? भगवान भगवत गीता में कहते हैं, एक वैराग्य का भाव जिस व्यक्ति के हृदय में है, वो इस संसार में रहते हुए भी भौतिक बंधन उसको बांध नहीं सकते। उस व्यक्ति का जीवन कमल के समान होगा, पद्म पत्रमिव वामसः। जिस प्रकार से कमल का पुष्प कीचड़ में होता है लेकिन कभी कीचड़ का स्पर्श नहीं करता, उसे ऊपर हो रहता है, उसी प्रकार से एक जो भगवत भक्त है, जिसके हृदय में वैराग्य की भावना है, वो इस संसार में रहते हुए भी सारे कार्य करते हुए भी कभी भी इस संसार के बंधनों में बंधेगा नहीं। तो ये है वैराग्य की समझ। तो कोई कह सकता है कि ठीक है ये वैराग्य, लेकिन हमें क्यों इस वैराग्य की भावना को प्राप्त करना चाहिए? तो शास्त्र कहते हैं वैराग्य की भावना को इसलिए प्राप्त करना चाहिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को क्या है, प्रिय है। जहां देखी प्रीत हना गौर भगवान। किसी व्यक्ति के हृदय में थोड़ा भी वैराग्य का भाव देखते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। बल्कि और वास्तव में यही जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य सक्सेस क्या है, सफलता, कि हमारे कार्यों से कौन प्रसन्न हो जाने चाहिए, भगवान। हमारे कार्यों से भगवान आनंदित हो जाने चाहिए। हाँ, जिस प्रकार से हनुमान को देखो, हनुमान जी ने एक बार देखा माता सीता को कि ये सीता देवी ये लगा रही थी माथे में, क्या कहते हैं उसको, सिंदूर लगा रही थी। तो सिंदूर का ये टीका ऐसा बड़ा सा लगा रही थी माथे में। तो हनुमान जी ने देखा और पूछा, माँ सीता आप ये क्यों और क्या और क्यों लगा रही हैं? तो सीता माता ने कहा, मैं ये सिंदूर लगा रही हूँ जिसके द्वारा भगवान राम बहुत आनंदित होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। अभी हनुमान ने सोचा, हनुमान का जीवन किसके लिए है, किसके लिए है, भगवान राम के लिए। हनुमान का हर कार्य भगवान राम को आनंद प्रदान करने के लिए है। तो हनुमान ने सोचा, अच्छा ये सीता छोटा सा या टीका लगा के राम इतने खुश होते हैं, तो मैं कुछ करके दिखाता हूँ। हनुमान गए मार्केट में, पूरा सिंदूर का बोरी उठा के लेके आ गए और सारा सिंदूर उठाकर पूरे शरीर में लगा दिया और लगा दिया। उन्होंने सोचा, छोटे से इतना आनंद तो मैं पूरा लगाऊं तो राम बड़े आनंदित होंगे। तो हनुमान जी ने पूरे शरीर में लेप कर दिया और जाकर किसके सामने खड़े हो गए, भगवान राम के सामने खड़े हो गए। और भगवान राम आनंदित होकर हंसने लगे और फिर हनुमान जी बताने लगे। और तब से परंपरा शुरू हुई है, जो भी व्यक्ति हनुमान के पास जाता है क्या लेके पहुंचता है, सिंदूर। अपने माथे में नहीं लगाएगा, बाहर निकलेगा तो बाकी सब चीजें लगाएगा, भगवान का टीका नहीं लगाएगा, तिलक लगा के जाएगा। हनुमान के पास जाएगा, हनुमान आईफोन 7 आया है मुझे चाहिए, लेकिन मैं माथे में तिलक नहीं लगाऊंगा, हनुमान से सब कुछ मांगेगा, भगवान से सब कुछ मांगेगा। सिंदूर लगाना है तो हनुमान जी तुम लगाते रहो, तुम्हारे बॉडी में लगाया जाए, मैं धारण नहीं करूंगा। तो हमारी ऐसी स्थिति है। तो वास्तव में जो भक्त है उसका जीवन है भगवान को आनंद प्रदान करना। तो भगवान संतुष्ट होते हैं इस वैराग्य की भावना से। जगन्नाथपुरी में आप जाते हो तो जगन्नाथपुरी में जो भगवान जगन्नाथ है उनकी जब रथ यात्रा होती है तो वहां के जो राजा हैं, अभी जो राजा है उनका नाम है गजपति महाराज, वो आते हैं और रथ निकलने से पहले झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू से आगे का सारा रास्ता सफाई करते हैं और चंदन का जल छिड़कते हैं। तो राजा होकर भी भगवान के लिए क्या करते हैं, ऐसी एक प्रकार की तुच्छ सेवा है वो करते हैं, ये उनके हृदय में वैराग्य का भाव है। तो इस प्रकार से भगवान ऐसी भावना से आनंदित होते हैं, तुष्ट होते हैं या प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के 15वें अध्याय के एक श्लोक में कहते हैं, वहां कहते असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। भगवान कहते हैं ये जो वैराग्य है ये शस्त्र के समान कार्य करता है, धार धार पैनी तलवार के समान कार्य करता है। किन चीज को काटने के लिए? इस संसारिक जगत में हमारी आसक्ति को काटने के लिए। हम इस संसार से बहुत प्रेम रखते हैं, बहुत लगाव रखते हैं, तो उसको काटना है तो उसके लिए ये थोड़ा सा वैराग्य का भावना हमारे हृदय में होना चाहिए, जिसके द्वारा हम इस आसक्ति को काट सकते हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा, डिटैचमेंट का ये जो शस्त्र है उससे काट दो। दो चीजों को काटता है व्यक्ति, एक है इस संसार के विषयों को भोगने की आसक्ति को काटता है, और दूसरा इस संसार पर प्रभुत्व प्राप्त करने की भावना को काट देता है। इस संसार में हम क्या बनना चाहते हैं? कंट्रोलर बनना चाहते हैं। देखो किसी घर में शांति नहीं है आजकल, है किसी का घर जो बहुत कूल है इसलिए एसी लगाना पड़ता है, एक से काम नहीं बनता, मतलब इतने रूम्स होते हैं, हर रूम में टेलीविजन रखता है व्यक्ति, हर रूम में बाथरूम्स होते हैं, हर रूम में इंडिविजुअल रखते हैं हर चीज। क्यों? क्योंकि शांति नहीं है। शांति है तो सब एक यूज कर सकते हैं। जैसे आप सोचो शांति क्यों नहीं है, जैसे कोई मानो कोई टेलीविजन ऑन किया है तो पत्नी बच्चे सब कुछ सब आते हैं और हर एक व्यक्ति अलग अलग चैनल देखना चाहता है, वहां लड़ाई शुरू। हाँ तो यहाँ संसार में हम कंट्रोलर बनना चाहता है। पत्नी कहती है घर का मालिक कोई है, किसके मर्जी के अनुसार होना चाहिए? पत्नी कहती है मेरे मर्जी से चलना चाहिए, मैं होम मिनिस्टर हूँ। पति कहे सोचता है मैं कमा के लाता हूँ, मेरे अनुसार चलना चाहिए। बच्चे सोचते मैं फ्यूचर हूँ इनका, मेरे अनुसार चलना चाहिए। अशांति ही अशांति है, तो कैसे संभव है? हर एक व्यक्ति अपना स्वामित्व जताना चाहता है, इसलिए ये जो असंग डिटैचमेंट का भावना है ये काटने के लिए ये वैराग्य की जो भाव है वो विकसित करना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जैसे परीक्षित महाराज वो समझ गए, परीक्षित महाराज को जब शाप मिला, किसके द्वारा शाप मिला? एक ब्राह्मण के द्वारा जो भारतवर्ष के राजा थे। परीक्षित महाराज के संसार में किसी चीज की कमी नहीं थी, पांडव उनके उत्तराधिकारी थे, लेकिन एक ब्राह्मण ने उनको शाप दिया कि आप मृत्यु के समय आपको क्या होगा, आपकी जो मृत्यु है वो सातवें दिन तक्षक नाम जो उड़ने वाला सर्प है उसके द्वारा आपकी मृत्यु होगी। तो ऐसे जब उनको पता चला तो उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया। किसकी योजना देखी इसके पीछे? कृष्ण की। उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा बहुत अमेजिंग उनके वर्ड्स थे। परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं बहुत नीच व्यक्ति हूँ और मैं अपने घर गृहस्थी सांसारिक वस्तुओं के प्रति बहुत आसक्त हूँ। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई कि उन्होंने इस शाप को माध्यम बनाया ताकि मेरे अंदर इन सब चीजों के प्रति क्या आ जाए, वैराग्य का भाव, और जिसके द्वारा मैं जाऊ गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, और बड़े बड़े महात्मा भक्तगणों से भगवान की कथाओं को सुनो, अपना मन उसमें लगाओ और अपना शरीर त्याग दो, ऐसी भावना। तो ऐसे महान भक्त कुछ भी ऐसा घटित होता है तो भगवान की क्या देखते हैं? कृपा देखते हैं। अभी हमारे जीवन में कुछ विपरीत होता है तो सबसे पहले किसी को कोसते हैं, दोष देते, तो वो कौन है? भगवान, तुमने ऐसा किया है। लेकिन कुछ अच्छा हो तो कहते मेरे पत्नी के कारण अच्छा हो गया, मेरे कारण अच्छा हो गया, मेरे बच्चों के कारण अच्छा हो गया, मैंने LIC निकाल के रखा था ना उसके कारण अच्छा हो गया, मेरा वो फिक्स डिपॉजिट था उसके कारण बच गया। वो भगवान को कभी श्रेय नहीं देता, कुछ गलत हो जाए तो सारी उंगलियां किसकी ओर? भगवान की ओर। ऐसी हमारी स्थिति है। हाँ, तो हमें स्वाभाविक रूप से इस संसार से विरक्ति का भाव लाना पड़ेगा और भगवान की सेवा में क्या होना होगा? नियुक्त होना होगा। और यदि हम नहीं होंगे तो भगवान को कदम उठाना पड़ेगा, जैसे उन्होंने एक राजा के जीवन में उठाया था। कौन थे वो राजा? महाराज भर्तृहरि, चित्रकेतु भी हैं। लेकिन भर्तृहरि का बड़ा अमेजिंग है, ये उज्जैन अवंती के माँ, मालदा जो प्रदेश है, हाँ, जो आजकल उज्जैन है, उसका पहले नाम अवंती देश था। अवंती नरेश विक्रमादित्य उनके छोटे भ्राता थे। ऐसे भर्तृहरि राजा थे, और वैसे देखा जाए ये भर्तृहरि बहुत प्रजा का हित करने वाले बहुत महान राजा थे। हाँ, शास्त्र कहते हैं कि हर सुख संपन्नता से उनका जो प्रजा है वह निवास करता था, और इनकी बहुत सारी रानियां थी। इतनी सारी रानियां थी, उनमें से एक रानी थी जो उनसे प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे, और उसमें इतने मग्न हो गए थे। उसको कहते ना पत्नी प्रेमी, एक होता है भगवत प्रेमी, दूसरा होता है पत्नी प्रेमी, और बहुत प्रकार के प्रेमी होते हैं। तो ये इतना मैड हो गया था, पागल हो गया था, उसको कुछ और समझ में नहीं आ रहा था, राजा भर्तृहरि को। तो एक बार उस उनके राज्य में एक गरीब ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, वस्त्र आदि नहीं था, भौतिक सुविधाएं नहीं थी। तो वो ब्राह्मण और वो दोनों तपस्या करने लगे। तपस्या किए तो कोई देवता या कुछ प्रकट हो गया, और उन्होंने उनको एक फल दे दिया। उस ब्राह्मण को कहा कि ये फल आपके लिए है, इसको, इस फल को आप खाओगे तो जिससे आप अमर हो जाओगे, बुढ़ापा आपको छुएगा नहीं और शरीर निरोग रहेगा। तो अभी पत्नी को इसने बोला कि ऐसा ऐसा फल है, एक गरीब बेचारे। पत्नी कहती है जीवित रहने से क्या फायदा, फल खा के मानो हम अमर हो गए, लेकिन खाने पीने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसे अमरता का क्या लाभ? वस्त्र आदि नहीं, सुविधा नहीं, अमरता से अच्छा क्या है? मरना। तो पत्नी बुद्धिमान थी, पत्नी ने कहा कि ये तो हमें राजा को दे देना चाहिए, राजा अच्छा रहे तो वो जनता का हित कर सकता है। तो इसलिए वो उस फल को लेके जाता है ब्राह्मण, और वो राजा के पास जाता है और उसको देता है। राजा अपने सभागृह में बैठा हुआ था सिंहासन पर, राजा को वो फल देता है और उस फल की महिमा को बताता है। तो जैसे ही राजा के हाथ में वो फल आता है और इसकी महिमा वो सुनता है, फल खाने से अमरत्व, निरोग और वृद्धा अवस्था छुएगी नहीं, तो जैसे फल हाथ में आया तो किसका स्मरण आया होगा सबसे पहले उसे? अपने रानी का, जिसका नाम पिंगला था। इसको कहते हैं ना, जो दिल पे वो चूल्हे पे, ये शास्त्रीय है। आप कोई व्यक्ति आपके घर में आता है, उससे आप लगाव रखते हैं तो तुरंत उसके लिए आप भोजन बनाना शुरू करते हैं, मतलब चूल्हे पर। जिसको कुछ, जिसके प्रति कोई भावना नहीं, वो घर आते ही पानी भी नहीं पूछते, भगा देते हैं हम उसे। तो ये स्वाभाविक है, मतलब जिसके प्रति हमारी आसक्ति है पानी वहां ही बहेगा। सारा प्रेम, सारा धन, सारी सुविधाएं क्या होगी? वहीं जाएगी उस व्यक्ति के लिए, हम तत्पर होंगे देने के लिए। जैसे ये फल आया, उसने लगा अच्छा मेरी पिंगला वो बूढ़ी हो जाएगी तो कैसे होगा, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। कहते ये फल दूंगा तो किसको दूंगा? पत्नी मेरी भारिया पिंगला को ही दूंगा। ये गया राजा बड़ा उत्साह, जैसे होता है ना माता पिता के पास कुछ चीज आती, कहते किसको मिलना चाहिए? बच्चों को, क्योंकि हृदय में किसको रखा है? बच्चों को। वैसे ही राजा के हृदय में वो भारिया थी, पिंगला थी। और ये गया राजा बड़े उत्साह से उस पिंगला के हाथ में दे दिया, और पिंगला भी बहुत एक्सपर्ट थी। पिंगला ने जैसे फल लिया हाथ में तो वो भी किसी और के बारे में सोच रही थी। पिंगला वो राजा से इतना प्रेम नहीं कर रहे थे, पिंगला प्रेम कर रही थी दरोगा से, जो वहां घोड़ों के रखवाले आदि करने वाला जो हेड था वो रानी उनसे उनका संबंध रखते थे। और जैसे उसके हाथ में आया, क्योंकि उसका हृदय उसके लिए नहीं है, किसके लिए था? उस दरोगा के लिए। ओके, ये फल ओ उसको देना चाहिए। वो कहती है महाराज अब इतना उससे प्रीति रखते हैं, ये तो इतना पवित्र फल है, ये तो स्नान आदि करके थोड़ा मेडिटेशन आदि करके खाऊंगी मैं। इसका मेडिटेशन कौन था? दरोगा। तो ये उसकी इंतजार में थी। और जब वो आया मिलने तो ये रानी कहती है दरोगा जी ये फल आपके लिए मैंने रखा है, उसके हाथ में देती है। अभी वो दरोगा भी रानी से प्रीति नहीं रखता था, वो तो एक वेश्या थी जिनसे प्रेम करता था। वो जैसे फल को हाथ लिया उसका हृदय बह रहा था दूसरी ओर। उसने कहा महारानी आपका इतना अनुपम प्रेम मेरे प्रति, ये तो इतना पवित्र है, मुझे लग रहा है गंगा स्नान करने के बाद ही खाना चाहिए, वैसे नहीं खाना चाहिए, गंगा स्नान करके पवित्र होके खाऊंगा। वो गया और वो जाकर किसके हाथ में सौंपाया उसने? उस वेश्या के हाथ में। वेश्या बहुत बुद्धिमान और सद्बुद्धि थी उसे उसके अंदर। जैसे वो फल उसके पास आया ना, वो समझ गई कि ये जिसने मुझे लाके दिया है ये स्वार्थ से भरा हुआ है, स्वार्थ से प्रेरित है, मेरा उपभोग करना चाहता है। तो कहते कि क्या लाभ ऐसे जीवन का और ऐसे फल आदि से, अमरत्व प्राप्त करना, निरोग प्राप्त करना, वृद्धावस्था से रहित जीवन नहीं, मेरा जीवन वैसे ही बहुत गंदा है, मेरा जीवन दूसरों के हित के लिए नहीं है। अच्छा होगा क्योंकि संसार में कोई भी किससे निष्काम प्रेम नहीं करता, करता है क्या? नहीं। जब कोई व्यक्ति बड़े होटल्स में जाता है तो वहां दरवाजे अपने वो जो होते हैं ना सब पहन के पहरेदार, तो वो खोलते हैं आपके लिए, उसके लिए आप क्या करते हो? उनको पे करते हो। हाँ, तो मतलब कोई किसके लिए दरवाजा भी नहीं खोलता है, कोई किसके लिए कुछ कप पानी भी नहीं पूछता है। इस संसार में सारे जो संबंध है वो स्वार्थ पर टिके हैं। किस पर टिके हैं? स्वार्थ पर। स्वार्थ आप पूर्ति नहीं करोगे तो एक दूसरे के संबंध छोड़कर, पति पत्नी पुत्र आदि सब एक दूसरे को छोड़कर क्या करते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि एक वृक्ष पर यदि फल नहीं है, जब तक फल है तब तक पक्षी बैठते उसके ऊपर, फल नहीं है तो वो बैठते नहीं है, भूल जाते हैं, दूसरे वृक्ष के पास जाते हैं। तो इस संसार के जितने भी संबंध है वो बंधे हुए किससे? स्वार्थ। कुछ ना कुछ मेरा स्वार्थ है तभी मैं वो संबंध में बंधा हूं, अन्यथा नहीं। तो वो कहती है कि ये जीवन तुच्छ है। हाँ, मैं एक महान व्यक्ति को ये फल दूंगी जो सबके हित की कामना करता है। बेचारी वेश्या सुबह उठी, स्नान आदि करके हाथों में फल लेकर राज दरबार में किसके पास पहुंचे? महाराज भर्तृहरि के पास। महाराज भर्तृहरि के उनके पास पहुंची तो उसको ये उसकी महिमा बताने लगी। जब ये फल उस भर्तृहरि के हाथ में आया उसको आकाश के तारे दिन में दिखने लगे। उसने सोचा, उसने बड़ा अच्छा एक श्लोक बोला। अब उन्होंने 300 श्लोक की रचना की है। अब पहला है श्रृंगार शतक, पहला है नीति शतक, श्रृंगार शतक और फाइनली है वैराग्य शतक। 100 श्लोक वैराग्य ऊपर लिखे, उसमें से शुरुआत में वो कहते हैं या चिंतयामि सततम् मयि सा विरक्ता साप्यान्यमिच्छन्ति जनम् स जनान्यसक्तः अस्मत् कृते च परिशुष्यति काचिदन्या देवतां च तं च मदनं च इमां च मां च। पूरा ये जो स्टोरी था ना उन्होंने एक श्लोक में डाल दिया। वो कहते या चिंतयामि सततम्, मैं जिसका सतत चिंतन कर रहा था
महिंसा विरक्ता, वो मुझसे उसको वैराग्य था। हाँ, और साप्य अन्यम इच्छन्ति, वो भी किसी और की इच्छा कर रहे थे। हाँ, साप्य अन्यम इच्छन्ति जनम जनोन्य आसक्ता, और वो भी किसी और से क्या था, आसक्त था। तो कहते हैं ये सारी चाल किसी ने चले थे, तो वो कौन था, कामदेव था। कौन था, कामदेव, सब काम से प्रेरित थे। कहते मेरा धिक्कार है, मेरे रानी का धिक्कार है, वो दरोगा का धिक्कार है, उस वेश्या का भी धिक्कार है, और ये सारा घटनाक्रम जिसने बनाया वो कामदेव का भी क्या है, धिक्कार है। तो इस प्रकार से हम क्या सीखते हैं इससे, कि यदि हम स्वाभाविक रूप से हाँ इस भौतिक जगत से अनासक्ति का भावना यदि नहीं लाएंगे हृदय में, तो भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे जैसे उन्होंने किसके लिए की है, महाराज भर्तृहरि के लिए। तब वो समझ गए इस संसार के स्थिति को, तब वो भगवान की सेवा में नियुक्त हो गए। इसलिए वास्तव में कुंती महारानी कहती है कि क्या है, किसी चीज का त्याग करना ही है। तो कुंती महारानी अपने एक श्लोक में कहती है कि हमें अहंकार का त्याग करना है, मिथ्या अहंकार। जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री भी एदमान मदपुमान, व्यक्ति को अपने जन्म का अहंकार है, व्यक्ति को अपने सौंदर्य का अहंकार है, व्यक्ति को अपने नॉलेज का अहंकार है, व्यक्ति को अपने धन का घमंड है, और इसी से वैराग्य लाना है। वो चीजें होना अच्छा है, लेकिन उससे यदि हम गर्वित होते घमंडित होते हैं तो कभी भी कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो जो मिथ्या अहंकार का भावना है उससे हमें वैराग्य लाना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैराग्य का सबसे बड़ा श्लोक कोई है तो वो एक ही श्लोक है, और वो कौन सा है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा उसको गले में धारण करना चाहिए, और वो श्लोक है तृणादपि सुनी चेना तरो रवि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कि तृणादपि सुनी चेना, तृणादपि सुनी चेना, नीचे ने नहीं सुनी चेना, तृण से भी अधिक नीच भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। तरो रिव सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील, और अमानिना मान देना, कभी मान की अपेक्षा ना रखना कि मुझे मान सम्मान आदि मिलना चाहिए। मान सम्मान की अपेक्षा ना रखते हुए दूसरा हमें अपमानित करे तो भी उसको मान देने के लिए तैयार होना चाहिए। पांडवाद को देखो उनके जीवन में, तो ऐसी भावना होगी तो वास्तव में बहुत बड़ा वैराग्य है। और असली वैराग्य किसी में है और उसका रिजल्ट क्या है, तो शास्त्र कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि। तो कोई कहे कि मुझ में बहुत वैराग्य है, तो वैराग्य के हैं तो उसका मतलब क्या है, उसकी जीवा में भगवान का नाम क्या होना चाहिए, सतत उच्चारित होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो इस प्रकार से हाँ ये जो वैराग्य है तो ये हमारे अंदर हमें कैसे लाना चाहिए, तो शास्त्र कहते बोलने से वस्त्र धारण करने से नहीं आएगा, उसके लिए क्या करना होगा, जैसे एक प्रणाम मंत्र है गौर किशोरदास बाबा जी का, विप्र लंब रसाम बोधे, उनका प्रणाम मंत्र ऐसा है नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्त है, वो साक्षात वैराग्य के मूर्तिमान रूप है, यहाँ होंगे अल्टर में। तो उनके अंदर क्यों ऐसा वैराग्य है, वहां कहते रसाम बोधे, क्योंकि वो भक्ति रस का क्या कर रहे हैं, आस्वादन, रस वर्ज रसो पेशा परम दृष्टवा निवर्तते। जब भगवत भक्ति का रस आप अनुभव करोगे तो स्वाभाविक रूप से ये सांसारिक आसक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस रस को पान करने का मतलब है भगवान के नामों का उच्चारण प्रतिदिन करना माला पर, भगवान के कथाओं को निरंतर भक्तों के मुखारविंद से सुनते रहना, गीता भागवत आदि शास्त्रों को पढ़ना, मंदिर आकर किसी ना किसी सेवा को
करना, तो ये क्या है, एक रस हमें मिलता है। जैसे शराबी को रस मिलता है ना, कुछ भी हो ड्रामेबाजी करके बहाने बना के वो दुकान ढूंढी लेगा और वो जाकर बोतल खोली लेगा, उसका रस उसमें है। तो वैसे ही है, जब भक्ति के कार्य में हम लगेंगे, इंद्रियों को भक्ति के कार्य में निमग्न करेंगे, खाएंगे तो क्या खाएंगे, कृष्ण प्रसाद। तो ऐसा करेंगे तो फिर हम उन्नत रस का अनुभव करेंगे और स्वाभाविक रूप से इस भौतिक जगत के चीजों से क्या होंगे, अनासक्त हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत बहुत सरल ये जो भावना है और ये सारे भक्तों ने आचार्यों ने प्रकट की, और उससे क्या हुआ कि वो भगवान के चरणों में बहुत दृढ़ता से लगे रहे। तो इसलिए भगवत गीता हमें वैराग्य की शिक्षा देती है। भगवान गीता में कहते हैं इंद्रिया अर्थेषु वैराग्य, तीसरे अध्याय में भी भगवान कहते हैं। तो इसलिए जो वैराग्य है उसको हमें समझना चाहिए उचित रूप से, और कितना महत्वपूर्ण है और कैसे हमें इसको लाना चाहिए, तो इन सब की हमने चर्चा की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे।